नमस्कार आदाब श्रोताओं। पूरे विश्व के साथ साथ आज हमारा देश भारत भी कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। भारत 125 करोड़ की आबादी वाला यह देश, जिसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ सरकारी तंत्रों पर नहीं बल्कि हमारे देश में कार्यरत कई सारी कंपनियां, संस्था, अन्य सर्विसेज तथा लेबर वर्ग पे भी टिकी है। कोरोना के संबंध में हुए अचानक लॉकडाउन के कारण सरकार ने पूर्ण रूप से इन सभी सर्विसेज को स्थगित करने का फैसला तो ले लिया, परंतु यह फैसला हमारे समक्ष कई सारे सवाल भी खड़े करता है। जैसे जिस देश की अर्थव्यवस्था पहले से चरमराई हुई थी, उस अर्थव्यवस्था का भविष्य अब क्या होगा? क्या इसका हमारे जीवन पर भी फर्क पड़ेगा? क्या कई सारी नौकरियां खतरे में आएंगी? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आइए हम बातचीत करते हैं उमी डैनियल सर से। उमी डैनियल, डायरेक्टर ऑफ माइग्रेशन एंड एजुकेशन, एडिड एक्शन साउथ एशिया। डैनियल सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। हमें पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, ऐसे में मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, एंड ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मैं इस कुछ इश्यूज के ऊपर बात करने जा रहा हूँ।
मेरा जो पहला सवाल आपसे होगा वह यह है कि भारत के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आप इस कोरोना लॉकडाउन को किस तरह देखते हैं? इसका जो कैश फ्लो है हमारे देश में, उसमें क्या स्थिति बनने वाली है?
अभी जो स्थिति लग रहा है कि इससे पहले भी थोड़ा स्लो डाउन तो भारत का आर्थिक स्थिति बहुत स्लो होने हो रहा था, तभी कोरोना आ गया और पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति पे गुजर रहा है अभी, और भारत में भी वही हम देख रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं, जो भी काम कर रहे थे, जहाँ पर प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं, ये सब बंद हो चुके हैं। एक नेशनल लॉकडाउन जो पूरा भारत में अभी चल रहा है, इसके आधार पर जो व्यवसाय हैं, जो फैक्ट्रीज हैं जो चलना चाहिए और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, सो इसमें और प्रोडक्शन नहीं हो रहे हैं और आर्थिक स्थिति और भी खराब अवस्था में जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़े दिस विल बी ए ह्यूज शॉक टू इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये लॉकडाउन और ये आगे कितने दिन रहता है और इसके ऊपर आप आकलन कर सकते हैं कि क्या होगा आगे का जो आर्थिक परिस्थिति भारत में।
सर, तो इसको देखते हुए जो हमारे देश में जो छोटे छोटे व्यापार हैं जिनसे कि हमारा जीडीपी आता है, उसपे क्या असर पड़ने वाला है? आप इसपे इसका कितना असर देखते हैं? छोटे छोटे व्यापारियों पे, माइग्रेंट लेबर्स पे, कुक्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सारी जो सर्विसेज हैं इन पे क्या असर पड़ने वाला है आने वाले वक्त?
ये सर्विसेज जो था गांव में, जो शहरों में, शहरों की बात कह रहे हैं, जो छोटे छोटे व्यापार करते थे, जो वेंडर्स हैं, जो छोटे छोटे ठेला वाला है और बाकी जो लोग इनफॉर्मल जो इकोनॉमी के बाहरी, दे आर पार्ट ऑफ ए इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो ये तो बंद हो चुका है और इसमें छोटे छोटे जो आर्थिक जो काम करते थे लोग, कहीं पे रेस्टोरेंट में काम करते थे और ये सब बंद हो चुके हैं। इसके यही है कि दो प्रकार है, एक तो जो लोग भी इसमें प्रभावित हुए हैं, जो इसमें काम कर रहे थे उनके पास नहीं है पैसा, और जो लोग घर में हैं, जो इसको इसका लाभ ले रहे थे कि इसको यूज कर रहे थे ये सर्विसेज को, वो भी घर में बैठे हैं। और इसमें जो पूंजी लगना चाहिए, लोग इसके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा था। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लोग करते थे और पूरा का पूरा बाजार में वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, खरीदारी भी कम हो चुकी है और इसमें तो ये प्रभाव तो पड़ रहा है हर क्षेत्र में, से जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं कि बड़े बड़े आर्थिक जो संस्थाएं हैं और छोटे छोटे जो व्यापार करने वाले, सब जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए एक जीडीपी के लिए, वो सब इसमें अफेक्टेड है। तो जीडीपी का तो स्तर कम ही होगा, जीडीपी विल बी लेस।
अच्छा, आने वाले वक्त में जो माइग्रेंट्स, अगर हम खास करके माइग्रेंट्स लेबर की बात करें तो उनके माइग्रेशन पे कितना असर दिख रहा है? क्या वो मूव ऑन करेंगे या फिर जहां हैं वहीं वहीं रहेंगे?
ये एक बड़ा प्रश्न है अभी, क्योंकि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था की अपना एक रिपोर्ट आया है पूरा विश्व के लिए, और इंडिया के लिए ये कह रहे हैं कि 40 करोड़ जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये गरीबी के अंदर बहुत ही तेजी से वो गरीबी के अंदर चले जाएंगे. सो मोर पीपल लाइक 200 मिलियन पीपल दे पुश्ड इनटू पॉवर्टी. ये बहुत ही बड़ा समस्या है, क्योंकि पूरा आर्थिक व्यवस्था, पूरा इंटायर इकोनॉमी, जहां पर भी इनफॉर्मल वर्कर्स हमारे हैं, या फिर वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, या फिर हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भारी संख्या से ये लोग काम करते हैं. तो आज क्या हो गया कि इनकी स्थिति बहुत ही खराब है. और हमने देखा है कि शहरों में जो माइग्रेंट लोग गए हैं काम धंधा करने के लिए, वो तो गांव में आगे पीड़ित हुए कि उनका काम मिला नहीं, उनका खेती चला नहीं, उनका एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं. फिर शहर को गए, शहर में जाके ये सारे लोग शहर की जो अर्थनीति में इतने बड़े योगदान कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं वहां पे, आज इनके परिस्थिति भी बहुत ही खराब है. तो मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये गांव वापस आने का अभी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं अपने गांव आने के लिए, और हम देखते हैं परिस्थिति में लोग कैसे चाहते हैं गांव आने के लिए. इसके बाद आपके मौसम, जो मानसून की स्थिति आएगी और खेती बाड़ी के होंगे लोग, उसमें कुछ तो ऑब्जर्व हो सकते हैं गाँव में, पर भारी मात्रा में लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहने का एक आशंका है, और ये नंबर भी बहुत ही होगा गांव में. तो कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि फिर से अपने काम जो शहरों में करते थे उसमें शायद जुड़ सकते हैं, लेकिन हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्चुअली क्रिएट दैट कंडीशन, तो सरकार बनाना पड़ेगा, और एक एक ऐसे कंडीशन बने जहां पे लोग फिर से जाएं और काम करें. तो अगर ये इंडस्ट्री भी, ये सब माइग्रेंट वर्कर्स का देन है, जितने इंडस्ट्री चलते हैं, जितने सर्विसेज चलते हैं, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं भारत में, ये सब माइग्रेंट वर्कर का योगदान है. और इसमें मुझे लग रहा है कि एक स्टेज में जब लोग आएंगे, उन्हें आना चाहिए अपने गांव घर, और उनका जो भी एंटाइटलमेंट है, जो भी सहयोग सरकार अभी कर सकती है उनके लिए, वेजेस, उनको काम का काम चाहिए उनका, कैसे वो लोग एंगेज रहेंगे. फिर एक स्टेज आएगा जब वो जाना चाहेंगे, तो वो कंडीशन भी बनना चाहिए कि कैसे कंडीशन में वो फिर वापस जाएं और अपने काम में योगदान करें.
तो जब वो बैक होंगे तो अभी की जो सिचुएशन है, अभी लोग घर आना चाह रहे हैं आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर, इफ इफ अगर वो लौटते हैं अपने काम पे, तो रूरल अबेंडेंस, रूरल लेबर जो है वो अबेंडेंस में होगा, और ऐसे में इतने अबेंडेंस में उनको हो सकता है कि लो वेजेस पे रखा जाए, और सबसे ज्यादा हाई रिस्क में वही है अगर आप देखें तो. आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए जहां गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज लाए कि उनके वेजेस, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी वेजेस पे वर्क ऑन करे कि उनके लिए क्या वेजेस होने चाहिए?
हाँ, ये डिपेंड करता है कि गांव में जब माइग्रेंट वापस आते हैं उसमें कोई स्किल्ड लेबरर हैं, कोई अनस्किल्ड लेबरर हैं, और अनस्किल्ड लेबरर को आप एग्रीकल्चर हो या फिर महात्मा गांधी नरेगा में आप उसमें यू कैन इंक्लूड देम, बट लार्ज स्केल जो नंबर हैं, जो भी स्किल्ड जो लोग हैं, तो उनके लिए एक परिस्थिति होगा कि शायद वो तो पूरा इन अनएम्प्लॉयमेंट स्थिति में रहे. और हर एक के लिए, क्योंकि नरेगा का जो स्थिति है, मुझे लग रहा है कि शायद डिमांड बढ़े और ज्यादा पैसा उसमें सरकार लगाए, क्योंकि लोगों का डिमांड जो काम के लिए बढ़ता है, तो यूनिट रिसोर्सेस, तो अभी का जो स्थिति है, रिसोर्सेस आपको देना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर देना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी के ऊपर देना पड़ेगा. तो ये सब स्थिति, जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट सोशल सेक्टर में तभी चाहिए. और अगर इसी कारण से, अगर ये जो कोरोना इन्फेक्शन अगर किसी एरिया में फैलता है, वो ना हो, ये तो हम सब चाहते हैं, तो
बिल्कुल.
उसमें एडिशनल कॉस्ट फिर लोगों को झेलना पड़ेगा, द हॉस्पिटलाइजेशन, एंड द गवर्नमेंट हैज टू डू दैट, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन कि आप इन लोगों को कैसे आप बेटर बेटर सपोर्ट, बेटर मेडिकल सपोर्ट. सो इट्स नॉट ओनली लाइवलीहुड, जो मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, सोशल असिस्टेंस, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, और जो हम हेल्थ हाइजीन के बात कह रहे हैं, देन हेल्थ एंटायर थिंग गवर्नमेंट हैज टू टेक, बिकॉज पीपल आर हेल्पलेस, लोगों के पास काम नहीं है, लोग तो गांव में जाएंगे, तो ये स्थिति मुझे लग रहा है कि कैन बी टेकन अप ऑन प्रायोरिटी बाय द गवर्नमेंट थ्रू ए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग.
जहां भी काम करते हैं ये लेवल्स, आपको क्या लगता है कि जहां ये जाएंगे वर्क ऑन करने, फिर दोबारा अगर वो उस प्लेस पे लौट रहे हैं, तो क्या उनको वो एक्सेप्टेंस मिलेगी वहां पे, या फिर लोग उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, या कोरोना का डर रहेगा कि ये इन्फेक्टेड होगा, इस तरह से हो सकता है तो इसको रखना नहीं है, जैसे जो हम अभी सिनारियो देख रहे हैं कि लोग काम बंद है, लोग अपने घरों में किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये सारी सिचुएशन ये जो है ये चेंज होगी लेबर, खास करके माइग्रेंट लेबर्स के लिए?
और हम लोग जब इस स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं कौन कौन लोग काम करते हैं, माइग्रेंट लेबरर, छोटे मोटे उद्योग में, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग में, और शहरों में जो सारे सर्विस सेक्टर हैं और डोमेस्टिक सेक्टर भी हैं, घर में जो काम करते हैं, ये प्रोफाइल बहुत ही बड़ा है. और जब शहरों में एक डिमांड भी क्रिएट होगा, अगर माइग्रेंट शहर में नहीं है तो मुझे लग रहा है कि वो भी एक बड़ा सा क्राइसिस होगा, एक वैक्यूम होगा वहां पे शहरों में कि ये सब सर्विसेज चल नहीं रहे हैं, तब जाके माइग्रेंट वो जाना चाहेंगे और शायद एक डिमांड भी बढ़े वहां पे. और मुझे लग रहा है कि अगर डिमांड और सप्लाई का जो मेल अगर नहीं होगा तो डिमांड तो लोगों के लिए एक ज्यादा डिमांड पड़ेगा, तो ये एक स्थिति हो सकता है आगे जाके. और ये भी आपने जो बताया वो भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक स्टिग्मा, जो सिग्मा है उसमें भी वो लोग शिकार होंगे कि अभी पूरा नैरेटिव यही है कि जो माइग्रेंट आते हैं, कि बाहर से जो आते हैं वो और कोरोना इसको साथ साथ देख रहे हैं, समाज में हो या फिर पूरा जगह पे, क्योंकि माइग्रेंट्स आर द कैरियर्स का भी कह रहे हैं कि इनके माध्यम से आ रहे हैं. तो ये पहला जो हर्डल्स हैं, जब लोग गांव जाएंगे तो वहां पे कैसे एक स्थिति बने, लोग उनको ये नजर में नहीं देखे कि ये सब कोरोना है और ये अपने गांव के हैं, तो उसको एक अच्छे से डिग्निफाइड वे में उनको हम सपोर्ट करें. सिमिलरली जब शहरों में भी लोग जाएंगे तो वही कंडीशन चाहिए, वही एनवायरमेंट चाहिए कि ये लोग एक्चुअली दे आर कमिंग बैक फ्रॉम विलेजेस एंड दे नीड ए बेटर काइंड ऑफ नो ट्रीटमेंट, कि वो लोग भी अपने काम करें और दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग एवरीवन. सो ये लगेगा, मुझे लग रहा है कि दिस आर ऑल ह्यूमन बिहेवियर, कैसे इसमें परिवर्तन आएंगे, मुझे लग रहा है कि ये जरूर आना चाहिए आगे.
सर अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें ये, तो आप खुद माइग्रेशन सेल के हेड हैं, आप उतने आपको क्या लग रहा है कि क्या इसका प्रभाव कोरोना का, ये लॉकडाउन जो हुआ है, ये जो एक्सटेंशन हो रहा है लॉकडाउन में, क्या इसका प्रभाव बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे भी आने वाला है, क्या उनके ऊपर भी प्रेशर बनने वाला है अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का, कि कैसे हम आगे जाएंगे?
ये तो दिख रहा है अभी, इट्स क्वाइट विजिबल कि बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, और ये सब सेक्टर अभी प्रभावित हैं, और इस शायद मुझे लग रहा है कि तुरंत ये सब अपने काम करें, और जब काम करना शुरू करें तो मुझे लग रहा है कि दे कुड आल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट. जैसे कि हमारे संस्था है कि हम लोग जो काम करते हैं और सोशल सेक्टर में, तो ये सेक्टर भी अभी प्रभावित हैं, क्योंकि सोशल सेक्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन फंडिंग एंड फंडिंग जनरली फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है इनका तो कुछ कंट्रीब्यूशन आता है फॉरेन सोर्स से, और अभी ये चपेट में पूरा ग्लोबली अभी कोरोना की चपेट में है, लोगों का इनकम कम हुए हैं, लोग और वो स्थिति में नहीं है होंगे कि वो कंट्रीब्यूट करें एडिशनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज. सो शायद मुझे लग रहा है कि इसमें कमी हो
फंडिंग में हो,
बहुत असर पड़ेगा. और दूसरा है कि मुझे लग रहा है कि भारत में जो ज्यादातर कॉरपोरेट्स हैं, जो कॉरपोरेट्स CSR के थ्रू CSR वो लोग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, लोकल एनजीओ को, दो एक्चुअली फंड, तो उनके सपोर्ट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ प्रॉफिट बिकॉज कंपनीज तो बंद हो चुके हैं, उनके प्रॉफिट भी नहीं है, तो वो भी कमियां होंगे उनमें. और मुझे लग रहा है कि ज्यादातर जो अपील है कि रिलीफ फंड में, सरकारी रिलीफ फंड में, शायद उनका कंट्रीब्यूशन वुड बी मच मोर. सो एंड दैट विल आल्सो, वो भी थोड़ा कम सपोर्ट एनजीओ के पास जाए. तो एक आर्थिक स्थिति जो है, सो इवन एनजीओ एंड आईएनजीओ भी इसके ये फील आल्सो लाइक यू नो हैव द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन. ऑन या सो लेट्स सी आगे जाके क्या हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे.
बिल्कुल सर, अंत में मेरा एक सवाल है कि अभी समय मदद का है, हाथ बढ़ाने का है. हम जितनी मदद एक दूसरे के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें शायद वो कम ही है आज के समय में. तो ऐसे समय में आपकी संस्था क्या कर रही है लोगों की मदद के लिए?
जैसे आपने बताया कि हम पलायन के ऊपर ज्यादातर काम करते हैं, और इससे पहले भी हम बच्चों के साथ विभिन्न स्थान में, विभिन्न जगह पे, जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, बिहार में, पटना शहर में, भुवनेश्वर में, भोपाल में, हम ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और ईंट भट्टा श्रमिक, उनके बच्चों के साथ तो काम ही कर रहे हैं पिछले काफी साल से, कि उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन और न्यूट्रिशन ये सब मिले. और ये भी एडवोकेसी कर रहे हैं कि एक पोर्टेबिलिटी हो, सब जो जहां पे माइग्रेंट जाए उनके लिए पीडीएस मिले, और ये सब तो काम जरूरी था. लेकिन अभी देख रहे हैं कि यही समुदाय ज्यादातर एक्चुअली दे आर अफेक्टेड. सो हमने ये काम शुरू किया कि जहां जहां पे जो पलायन, जो प्रवासी श्रमिक हैं वो फंसे हुए थे, उनको हम मदद किए. ज्यादातर शहरों में उनको कनेक्ट किए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ और उनके जो सहायता केंद्र हैं. फिर हमने अभी करीब 5-6 हजार माइग्रेंट फैमिली के साथ काम कर रहे हैं जो ईट भट्टे में हैं बिहार में, और ये सब तेलंगाना, तमिलनाडु और उड़ीसा में. तो इनके साथ, मालिक लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि उन्हें कैसे खाना मिले और आश्रय मिले. और इसके साथ हम लोग अभी जिस गांव में माइग्रेंट अभी वापस आएंगे और आ चुके हैं, उनको हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि वो कैसे रहे और कैसे उनका वो मैनेज करें. और एक सर्वे भी कर रहे हैं हमको, हम गांव में, कि कितने लोग माइग्रेंट जो पलायन जो शहरों में हैं वो वापस आने वाले हैं. तो सरकार को हम बता सकते हैं कि कितने लोग वापस आएंगे, और इन लोगों के लिए आप क्वारंटाइन सेंटर हो कि ये कैसे उपलब्ध करेंगे. और एक तो हम लोग वॉलंटियर कुछ संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं, और नेशनल लेवल पे एक बहुत ही बड़ा एक कैंपेन हम लोग किए हैं कि केंद्र सरकार माने एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक टास्क फोर्स बनाए कंट्री में जस्ट टू लुक आफ्टर द माइग्रेंट्स. जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो कैसे वापस अपने गांव में आएंगे, कैसे उनका जो यातायात हो सकता है अच्छे ढंग से, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये लॉकडाउन के बाद ये तो बहुत ही बड़ी स्थिति होगी कि बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे. उनका हेल्थ का इशू है, उनका हाइजीन का इशू है, उनका बेटर ट्रांसपोर्ट का है, और उनको पूरा कोऑर्डिनेटेड कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी एक कैंपेन चल रहा है. और हम कह रहे हैं कि एक डिग्निफाइड प्रोसेस में ये सब हैंडल किया जाए, और उन्हें वापस घर आए, और आने के बाद उनके लिए जो लाइवलीहुड का अफसर हैं वो कैसे क्रिएट करें. तो ये सब हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कुछ तो ग्राउंड में और कुछ पॉलिसीज के ऊपर.
बहुत बहुत धन्यवाद डैनियल सर कि आपने हमें अपना समय दिया, इतने अच्छे से हमारे सारे प्रश्न पे आपने बहुत समय दिया और बहुत डिटेल में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जब हमें मोबाइल वाणी पर ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए होंगे तो आप हमारे साथ होंगे.
नमस्ते, धन्यवाद.
हाँ, धन्यवाद.